अब यही बात में अभी भट्टानंद मिश्रा में जाके बोलूं, कहीं बोलूं, क्या दिक्कत है बोलो? इसमें कुछ तकलीफ होने वाली है? होने वाली नहीं है। और मैं कभी यह सोचता ही नहीं हूं कि मैं बाउंड्री के भीतर बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर टेप हो रहा है, बाद में जाएगा, इतने विद्यार्थी सुन रहे, फिर दूसरे को कहेंगे, वो कहेंगे, वो ऐसा होने से थोड़ी होता है कि भाई एक बाउंड्री में से बाउंड्री के बाहर बात नहीं निकली। अलग में से निकली तो खलक न जानी, पर ये मान के ही बोलो तो उसमें बोल प्रतिपादन में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सचमुच अपने हृदय को टटोल लो कि हम कोई उत्तेजना में कसाय में तो नहीं बोल रहे हैं, सत्य के प्रतिपादन में कहीं, और फिर आगम के आधार से बोलो, बिल्कुल विनम्र भाषा में बोलो। हो गया,
संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में त्रिवर्धमान महान जिन विचरे हमारे धन में। द्रविलिंग और भावलिंग के संबंध में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। सम्यक दर्शन हुआ न हो और अंतरंग वैराग्य इतना बढ़ गया कि संसार में उपयोग नहीं लगता, तब मुनि दीक्षा ले सकते हैं क्या? स्वयं ऐसा निर्णय है कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि दीक्षा होती नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना मुनि दीक्षा लेना चाहता है, और सम्यक दर्शन हो नहीं और इतना वैराग्य बढ़ गया हो, तो सम्यक दर्शन के बिना असली वैराग्य तो पैदा ही नहीं होता, बढ़ने का सवाल तो कहां की बात है। वैराग्य को तो संयम को एक ही बात तो है ना, तो सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता तो वैराग्य कैसे हो जाए? और जिसे आप वैराग्य कहते हैं, यदि मान लो वो हो ही गया है, तो उस वैराग्य के बल से पूरी ताकत लगाकर सम्यक दर्शन प्रयत्न करने का प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तत्व का निर्णय जरूरी है, तत्व के निर्णय के लिए देशना लब्धि जरूरी है, देशना लब्धि के लिए गुरु की उपलब्धि जरूरी है। अब आप मुनि दीक्षा ले लेंगे तो सबसे पहले तो आप है कि पैरों पर प्रतिबंध लग गया, तो आपके जो ज्ञानी गुरु का समागम हो कदाचित दूर हो, तो आप जाने से प्रतिबंधित हो गए, है ना? दूसरे, अब तो आप ही गुरु बन गए ना, अब तो लोग आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अब आप किसी से समझने जाएंगे, आप साथ गुरु बन गए, और फिर किसी विद्वान से कहेंगे तू हमें समझा, हमें आत्मा आता नहीं है, तो उस विद्वान को जो ग्रस्त है वो तो आपसे उसे समझने का भाव आएगा, समझाने का क्यों आएगा? भक्ति का भाव आएगा। शिष्य के प्रति जो समझाने का भाव होता है वो कैसे है? तो तू सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा कह रहा है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो उपाय है उनसे दूर हो रहा है। यदि तेरे को वैराग्य हो गया है और निवृत्ति लेने का भाव आया है, तो सारे विषय कसाय के कामों से निवृत्ति लेकर तू आत्मा के तत्व ज्ञान के निर्णय में सब समागम से लग जा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। वहां कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो जो कहता है कि वो सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और वैराग्य हो गया है, वैराग्य जानते हैं किसे कहते हैं? पर के प्रति उपेक्षा का नाम वैराग्य है। अभी तो स्व और पर का भेद ही विज्ञान नहीं हुआ है, स्व को पर मान रखा है, पर को स्व मान रखा है, तो इस वैराग्य से तो स्व की उपेक्षा हो जाएगी, सदनिमित्त की उपेक्षा हो गई ना। स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है, और जिससे तू ज्ञानी धर्मात्मा को ग्रस्त हो उससे सम्यक दर्शन के उसके स्वरूप समझना चाहेगा, तो उसे पूजवाने का भाव होगा कि पूजने का? यदि उसको तुम पूजेगा, उसके पैर पड़ेगा, तो लोग विरुद्ध होगा, मुनि धर्म की निंदा होगी, और उससे पूजवाने का प्रयत्न करेगा तो अपने लिखा ना कुंद ने कि जो स्वयं सम्यकहीन है और सम्यक दृष्टियों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं वो तो निगोद जाएंगे, तो वो तो निगोद का रास्ता है, तेरे को कैसा बैराग हुआ जो तू निबोध के रास्ते में जाना चाहता, तो हम तो नहीं पुजवाना चाहते हैं। अरे ये देश लेना ही इस बात का डंका है कि चोट है कि तुम हमें पूजो, क्योंकि अपने तो तीन तो लिंग शास्त्र में मान्य है ना, और उन मान्य जो द्रव्यलिंग सही हैं, तो सामने को व्यवहार से उसको पूजना ही चाहिए, तो उसको तुम धर्म संकट में डाल रहे ना खुद ही। पुजाने का भाव नहीं है, पुजाने का भाव भावलिंगियों का ऐसा सीधा थोड़ी होता है, लेकिन वो जिस भेद में बेश में है उसका अर्थ है कि सामने वाला उसे पूजे। और जब हम स्पष्ट ही समझते हैं कि सम्मा दर्शन के बिना मुनि लिंग होता ही नहीं है, और हम कहें सम्मा दर्शन तो है ही नहीं, वो धारण कर ले तो क्या मतलब हुआ उसका, जो असंभव बात है वो तू कहता मैं कर लूं। हाँ अभिप्राय में है, अभी मान लो कि नहीं है हमें अभिप्राय में, तो भी क्या मतलब वो सम्मा दर्शन के बिना ही मुनि पद लेके मोक्ष नहीं होने वाला है, तो तू उस चीज के पीछे इतना क्यों पड़ा है, उससे मुनि पद लेने कोई उद्देश्य है, मुक्ति प्राप्ति उद्देश्य है ना, तो मुक्ति की प्राप्ति का जो मार्ग है वो मार्ग होना चाहिए। वैद्य कहते हैं कि यदि आपको कोई बीमारी है तो उस वक्त आप ताकत की दवाएं खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, गरिष्ठ खाना खाएंगे, तो ताकतवर खाना बताया ना, तो वो आपको और अधिक तकलीफ पहुंचाएगा। पहले आप स्वस्थ हो जाएं, पेट ठीक हो जाए, फिर आप एक ताकतवर खाना खाओ। अब कह रोग तो ऐसा लग गया है, वो तो पेचिस है, बीमारी तो ठीक होनी नहीं इस भव में, डॉक्टर कहते हैं तो मरे छुटको, मरेंगे तभी होगा, तो फिर तब तक हम माल मसाले नहीं खाएं, तो खाओ मरना हो तो क्या करें बोल। यानी पेट खराब है और फिर भी तू माल मसाला खाना चाहता है, माल मसाला है वैराग्य, और मिथ्यात्व है पेट खराब। पेट की शुद्धि पूर्वक ही माल मसाला खाएगा तो वो शरीर को पुष्टि प्रदान करेगा, नहीं तो उसे पचाना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ये जो प्रश्न है ना कि वो सही नहीं है, मतलब ये बात सही नहीं है कि वैराग हो गया तो उपयोग लगता नहीं है, वास्तव में वो मरघटिया वैराग होता है, वो वास्तव में वैराग है ही नहीं, तो उपयोग नहीं लगता है दुनियादारी में, तो उपयोग को आत्मा में लगाना, और आत्मा में लगाना तो सम्मा दर्शन है, अब उपयोग लगता नहीं है तो उपयोग तो बाहर में ही लगेगा, और मुनि और हो जाएगा तो बाहर में लगाएगा उपयोग, और मुनि रहेगा तो मुनि धर्म बदनाम होगा, खुद को चक्कर में डालेगा और सैकड़ों को चक्कर में डालेगा, खुद ही कह रहा ना उपयोग नहीं लगता है आत्मा घर में नहीं लगता, दुनियादारी में उपयोग नहीं लगता थे? तो उपयोग आत्मा में लगाना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाना जो सही रास्ता है। देखो आप अभी गृहस्थ में बैठे हैं तो अपन को बहुत बंधन दिखते हैं, लेकिन बहुत आजादी है, हमसे भी आजादी तुम्हें ज्यादा है। अभी हम जहाँ कहीं जाएं तो सब आदमी एक विचित्र निगाह से देखते हैं, तो हमें व्यवहार में भी बड़ी बड़ी कठिनाई होती है, और तुम तो जहां भी जाना हो अपने वहां चले जाओ, तुमको पूछने वाला नहीं, पीछे बैठो आराम से सुनो, जो भी तत्व तुम्हें सुनना है, जिसको सही समझते हो, सही सत्य का निर्णय करना है तो भी तुम कर सकते हो। हम तो किसी को नजदीक से देख भी नहीं सकते, क्यों, हम तो उनके पास जाते ही तभी तो सतर्क पीठ घड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे, तो समझ समझ के बात करेंगे, पूरी सभा का रुख ही मुड़ जाएगा क्या है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि छोटे बने रहो जब तक सम्मा दर्शन नहीं हुआ है, सम्मा दर्शन नहीं हुआ है तब तक बड़े बनने में बहुत तकलीफ का काम है। वो सबसे बड़ी तकलीफ तो है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधनों से आप वंचित हो जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, आपको देशना लब्धि दुर्लभ हो जाएगी, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो काने पढ़ना दुर्लभ हो जाएगा मूल तत्व ज्ञान। अब नयों को नहीं समझते हैं तो नए चक्र पढ़ना पड़ेगा, और नए चक्र तो जैसे पढ़ना पड़ेगा वैसे पढ़ना पड़ेगा। अब आप विद्यार्थी नए चक्र पढ़ रहे हैं तो आप विद्यार्थी हो तो साधु हो, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो नए चक्र को तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ना जैसे आपको पढ़ना पड़ रहा है, और आपके बगल में बैठ के पढ़ेगा, और आपसे स्थूल बुद्धि है कम पढ़ा लिखा है, पकड़ पैनी नहीं है, तो आपसे कम समझ आएगा, उसे कम समझ में आएगा, पर तो वो अध्यापक झिड़केगा, झिड़कना चाहिए ना, तो आप कॉमन आपको भी उसमें हीन भावना आएगी कि कुछ नहीं समझता है, आपको भी उसको बड़ा मानना पड़ेगा क्योंकि आप उसे ज्यादा समझते हैं। परीक्षा होगी तो फेल भी हो सकता है कि 33% नंबर आए, आप 99% नंबर ला सकते हैं, तो उस वक्त तो उसका व्यवहार क्या होगा, बोलिए। मेरे को तो बहुत अनुभव है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी पन्नालाल करके थे, वो पढ़ते थे, वो उनकी शादी हो गई थी, फिर बाद में औरत मर गई, फिर वो ब्रह्मचारी हो गए, वो आगे विद्यालय में भर्ती हो गए, हमारे साथ पढ़ते थे, स्थूल बुद्धि थे, सब विद्यार्थियों से कमजोर थे, अब उम्र में तो बड़े थे, वो चंद्रा ओढ़ते थे, तो उनको अपेक्षा ये थी कि हमारा सब विद्यार्थी सम्मान करें। अब विद्यार्थी का तो जो क्लास फेलो है, आपस में कैसे व्यवहार होते हैं, और वहां तो बुद्धि के नाप से ही व्यवहार होगा ना, तो हमेशा इरिटेशन ही बना रहता था उनको, वे नॉर्मल क्लास में बैठ ही नहीं सकते थे। आप विद्यार्थियों के साथ उसे यदि पढ़ना है तो ऐसे ही विद्यार्थी बन के पढ़ेगा जैसे आप रह रहे हैं, तो वो ज्यादा ज्ञान अर्जन कर सकता है, और चंद्रा उड़ के पढ़ेगा तो बहुत एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है, ये अपने जितने चंद्रा वाले बैठे भर्ती हुए वे भग गए छोड़ छाड़ के, कोई पूरी पढ़ाई उनने नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो कोई इतनी गहराई से उनने अध्ययन नहीं कर पाया, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सब स्थूलता में ही रहे, लेकिन वो अपनी उस स्थूलता को इस नाम पर छिपाते हैं कि हमें तो वैराग्य ज्यादा है, इसलिए हमको ये बेकार की बातों में मन नहीं लगता, ऐसे कह के वो मूल तत्व ज्ञान का अपमान और करता है तो खुद की कमजोरी, तो वो गहराई से इस बात को पकड़ नहीं पाता, अध्ययन नहीं कर पाता है, और वो ऐसा कह के तो जिस तत्व ज्ञान के प्रति उसके हृदय में इतनी उपेक्षा बरत रही है, वो उसका विशेषज्ञ कैसे बन सकता है, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं मुनि हो गए हो तो पता चल जाएगा सम्मा दर्शन नहीं है, और सम्मा दर्शन के निमित्त आसपास में है नहीं, तो एक दफे यदि दीक्षा छेदना हो तो दीक्षा छेद के सामान्य ग्रस्त बन के सम्मा दर्शन के जो देशना लब्धि है उसे प्राप्त करके, तत्व ज्ञान प्राप्त हुए सम्मा दर्शन प्राप्त करके, और फिर मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि ऐसे सहज संयोग है कि मुनि दीक्षा रहते हुए तुम्हें तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है तो बहुत ही बढ़िया है, तो मैं नहीं कहता वो भ्रष्ट हो जाए, लेकिन नहीं होता हो तो जैसे भी संभव हो सम्मा दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर बालक तीर्थंकर क्या मुनियों को नमस्कार करते हैं, कोई द्रविलिंग भावलिंग से संबंध नहीं है, नहीं करते हैं, वैसे मुनिराज ही मुनि दीक्षा देते तब तीर्थंकर बिना मुनि के कैसे दीक्षित हो जाते थे, बेकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अपना प्रकरण तो ये चल रहा है ना, द्रविलिंग और भावलिंग उनसे इन प्रश्नों का कोई संबंध है नहीं है, क्योंकि अपना एक विषय है उससे बाहर की बात है ना, उसके उत्तर तो है मेरे पास, दे सकता हूं। तो दूसरा है क्या हम भी सच्चे मुनि के अभाव में बिना मुनि के दीक्षा ले सकते हैं, तुझे तो सम्मा दर्शन हो गया हो और सर्व साधन गुणस्थान की भूमिका होने के लायक भाव तेरे को आ गए हो, तो इतना गारंटी से समझ ले कि तेरे को सदगुरु का निमित्त नहीं मिलेगा तो तेरा मुनि पद रुकने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के सामने भी दीक्षा ले ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे सबसे बड़ा दोष उसका यह है कि यदि ये माने कि उसके बिना नहीं ले सकते हैं तो समझ लो एक दफे कोई विशिष्ट एरिया में मुनि नहीं रहे, भरत क्षेत्र में कोई मुनि नहीं रहा, अभी जैसे मालूम होगा ना छठवें काल में नहीं रहेगा अंत में, तो बाद में शुरू होंगे तो कैसे होंगे, यदि स्वयं नहीं ले सकता है तो स्टार्टिंग कैसे होगी, पर्टिकुलर एरिया विशेष में मुनि नहीं रहे, हम दूसरी जगह हम जा नहीं सकते, शांति सागर जी के पहले कोई मुनि नहीं था, ये तो नक्की बात है ना, तो उनने कैसे दीक्षा ली थी पहले बता, इसलिए तो उसमें कोई ऐसी बात, मेरे कहने का मतलब वो कोई समस्या नहीं है, वो ऐसा प्रश्न है जे कि इंग्लैंड में जो हमें हिंदुस्तान उनके कब्जे में था ना, तो वायसराय की नियुक्ति वहां होती थी, सबसे बड़ा अधिकारी हिंदुस्तान का बनता था वो, वहां उसकी नियुक्ति होती थी, वहां की पार्लियामेंट करती थी, मैंने वहां का प्राइम मिनिस्टर को बनाता था, तो तुम हिंदुस्तान के सिर्फ राज्यपाल बना के भेजते ना, तो किसी आदमी को यहाँ का वायसराय बना करके भेजने लगे। तो उन्हें समझाते हैं प्रधानमंत्री वगैरह उनका डिपार्टमेंट के, देखो ये नीति अपनानी है, अपन को ये करना है, आंदोलनकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, गांधी जी वहाँ पर ये आंदोलन करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सब समझाते हैं ना, तो वो सब समझाते थे। तो उन्होंने कहा आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछो, तो और सब बातें पूछी, तो वो कहे कि साहब आपने और तो सब बताया है लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे वहाँ चपरासी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मूर्ख तेरे को वायसराय बना के भेजा जा रहा है, तेरे को ये विकल्प आया कि चपरासी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहां के जो 600 राजा है ना, वो चपरासी बन के तेरे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तू क्या बन के जा रहा है तुझे पता नहीं है, जो तेरे को ऐसा विकल्प आता है कि चपरासी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तेरे को तू जाने लायक ही नहीं है, तू यही भेज। तो ऐसी बात यह है कि भाई मेरे को ऐसा हो जाए कोई मुनिराज मिले नहीं, और फिर मेरी सम्मदृष्टि हो जाऊंगा, छत्रगुणस्थान के साथ मिला तैयारी हो जाए, और फिर कोई मुनि नहीं मिले, दीक्षा नहीं ले पाऊं तो फिर मैं रह ही जाऊंगा। तू रहेगा तो तेरी कमजोरी के कारण रहेगा, किसी परद्रव्य के अभाव के कारण तेरा आत्मकल्याण रुकने वाला नहीं है। वो तो जाने दे, गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं काल द्रव्य नहीं होगा तो मेरा प्रणमन नहीं होगा, ऐसा तू नहीं समझना, जिन्हें परिणमन होना है और काल द्रव्य से निमित्त होना है तो काल द्रव्य होगा ही, ऐसी संभावना है ही नहीं कि नहीं होगा का सवाल नहीं है, उसे तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे खोजने की व्यग्रता करने की तेरे को रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं, वो बहुत साधारण बात है। लोक में ऐसा होता है कि सब शादी के हमारी लड़की के लिए योग्य लड़का नहीं मिला तो शादी कैसे होगी, चिंता की बात समझ में आती है, लड़का को योग्य लड़की नहीं मिला तो शादी कैसे होगी ये समझ में आती है, लेकिन अगर लड़का लड़की योग्य मिल गए सब बात न क्योंकि पंडित नहीं मिला तो शादी कैसे होगी, इसका विकल्प किसी को आज तक आया है? शादी तो पंडित ही कराता है, कोई ना कोई फेरा तो पारते ही है, इसकी किसी ने चिंता की हो कि हाय राम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तुम ही फेरे फैलने में हो जाएगी, बस उसमें क्या है काम, मतलब उसके बिना काम रुकने वाला वो एक होना चाहिए और एक होते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। वो करुणानियों का वर्णन है जिसमें क्या होता है ये बताया गया है, और ये चरणानियों का प्रश्न है कि क्या होना चाहिए, चाहिए की भाषा चरणानियों की है और करुणानियों की भाषा होते हैं की होती है। तो वो जो मुनि गिरते चढ़ते उतरते चढ़ते हैं ना, उनकी बात है, एक मुनि राजे ही है, अरे वो पहले में आ गए, अरे फटाफट कपड़ा तो नहीं पहन लेंगे, और पहले ही 11वें में चले गए, मेरा मतलब है ना ऐसा होता है। तो और मेरे से आपने बोलने पहले उसे पता ही नहीं कि मैं सम्मदृष्टि नहीं हूँ, तो समझता मैं सम्मदृष्टि हूँ, कोई द्रविलिंगी मुनि है थोड़ी समझता कि मैं मिथ्यादृष्टि हूँ, उसे पता थोड़ी है कि वो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सब ठीक ठाक है, ऐसा वो उनकी बात है, और यहाँ ये है हमें पक्का पता है कि हमें समय दर्शन नहीं है, और फिर वो दीक्षा लेने की बात है, महाराज दीक्षा दे रहे हो मैं कपड़ा खोल के गर्म, तो ये चाहिए वाला निर्णय है यहाँ, और वहाँ क्या होता है उसकी बात है। ऐसा तुरा भी पहला गुणस्थान से 11वें में चले जाना, 11वें से पहले में चले जाना, कोई रोकने वाला नहीं है। वो दीक्षा ले कहाँ रहा है, वो ले कहाँ रहा, तो लिया ले आया है। देखो बहुत बहुत मार्मिक बात है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि कोई लड़की आई अपने पिता से, कहा उसने कि मैंने अब कोई पति कर लिया है, अपनी महाबुंदर गंदी भाषा में मैंने खसम कर लिया है, समझ लीजिए ना, कर लिया मतलब शादी नहीं की, वैसे कैसे समझेंगे ना, कर लिया का मतलब आप समझेंगे कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाप ने कहा बुरा किया, तो दूसरे दिन आई कि पापा मैंने छोड़ दिया है, आप समझ गए ना कि अब तुमने और भी ज्यादा बुरा किया। तो फिर कर लिया तीसरे बुराई का, मैंने एक और कर लिया है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ होगा नहीं। कि उसे भी छोड़ दिया है। बोले क्या करे, क्या करे बाप, वो जब कहता है करना बुरा है तो छोड़ना बुरा कैसे हो सकता है। वो कह सकती ना लड़की, आपने कहा जो किया है बुरा किया तो मैंने बुरा काम छोड़ दिया, क्यों आप समझ रहे ना। तो वो करने के बाद छोड़ना उससे भी बुरा है, करना तो बुरा है लेकिन छोड़ना अच्छा नहीं, उसे नहीं करना अच्छा है, नहीं करना अच्छा था, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही पहले गुणस्थान में गिर गए हो तो वहां से जाए, तो वहां थोड़ी गए तो कपड़े पहन ले, वो दीक्षा ले ली हो और फिर पहला गुणस्थान हो जाए तो उसके लिए थोड़ी कहेंगे तुम कपड़े पहन ले, वो बात अलग है। और पहले है पक्का समझ रहे, संबंध असल नहीं है, और लेना उसमें फर्क है क्या नहीं। क्या अब तूने यदि कर लिया है तो उसके साथ शांति से जिंदगी भर रहे, इसमें ही लाभ है। वो यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यदि तूने दीक्षा ले ली है और संबंध असल नहीं था तो हम थोड़ी कह रहे तुम भ्रष्ट हो जाओ, शादी करे घर बसा ले। तो अभी ये तो आपने कहा था कि अपने गृहस्थ बन के पढ़ ले, तो अपने ये कहा था कि यदि उस वक्त वो तत्व ज्ञान की उपलब्धि के चांस नहीं हो आसपास, तो सब तेरे जैसे ही है ना आसपास का परिकर, और वो जहां पर उस दशा में नहीं जाया जा सकता है जहां उसके देशना लब्धि प्राप्ति के चांस हैं, तो देशना लब्धि प्राप्ति करने के लिए वो पद छोड़ के शादी कर लेना कहां कहा। सामान्य वैराग्य प्रवृत्ति रखकर अकेला वो पद छोड़ने की बात है, द्वारा गृहस्थी बसाकर फेरे पार कर धंधा पानी दुकान खोल के बैठने की बात थोड़ी है। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करना देशना लब्धि पूर्वक, और जितने जल्दी काम हो जाए काम करके फिर दीक्षा ले लेना, ऐसा है वो उसके लिए। वो छोड़ने की बात करके ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने सिर्फ चितम्बरी की दीक्षा ले ली थी ना थानकवासी की, और वो छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी, समाज यही तो झगड़ा गया, ऐसा चतरा क्यों ओढ़ते हो, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहने, फिर अबरा सम्मदृष्टि है अपने को कहते हैं, प्रतिमाधारी नहीं है। तो वो कहता मैं सारी जिंदगी जबानी में तो ऐसे रहा, अब मैं धोती कुर्ता पहनू, अब मैं सूट पैंट पहनू, इसलिए उनने वो वैसा ही पहने रहे कपड़े। अब उसके बहाने उनके कोई शिष्य हो और उसी भूमिका में भी पहुंच जाए जो गुरुदेव की में है, तो क्या गुरुदेव ये कहेंगे कि तू भी ऐसा तेमत लगा ले और चतरा ओढ़ ले। ऐसे ना हमें जरूरत नहीं है कि हम जाके वैसा करें, हम मानो अंतरंग दृष्टि से जो उनका परिणाम था सम्मदर्शन की भूमिका का वहां हम भी पहुंच गए, तो हम उन जैसा देश बनाएंगे, तो कब उनको हम अपने जैसे कपड़े पहनाएंगे कि हमारा गृहस्थी का समुदाय जैसा है पत्नी पुत्र वाला, तो उन्हें पत्नी पुत्र वाला बनाएंगे, उन्हें बन जाना चाहिए क्या। तो समझ लो हमने एक चदरा ओढ़ लिया, एक इतना कर लिया, अब इससे ज्यादा क्योंकि हम बोने के पद नहीं कहला है, पद छोड़ दिया, तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन उसको रहना चाहिए ना। एक छुल्लक जी थे, बाद में तो ग्रस्त पंडित बन गए थे, दीप चंद नाम है उनका, पर इधर अपने नौकरी करने भी आए थे, अपने नियुक्ति भी की थी, 8-10 दिन नौकरी करी भी थी, पहले छुल्लक थे। अब किन के शिष्य थे बताने की भी जरूरत नहीं समझता हूँ, ख्याल है ना। तो वो जब वो भ्रष्ट हुए तो उनने कपड़ा पहनते ही फटाफट बाजार में जाके सबसे पहले चाट खाई रात में, लोग बताते हैं मेरे को केकड़ी में हुआ था। तो मतलब छोड़ने का अर्थ ऐसा थोड़ी है, छोड़ने का अर्थ ऐसा है कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन रखे, वो सिर्फ पद छोड़े, आप समझ गए ना, और अपना जीवन पूरा तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाए, ऐसा छोड़ने की बात है। छोड़ने पड़े तो, और नहीं उसमें चल जाए तो जल्दी से जल्दी कर ले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो उसमें हम निपटा ले वो बात है, लेकिन पहले से ही जानता है तो वो दीक्षा नहीं लेने की बात है, ऐसी बात है। पूरा विवेक से देखो, हर जगह बुद्धि को गिरवी रखकर काम नहीं चलेगा, स्वयं के विवेक को जागृत रख करके ही सब निर्णय करना पड़ेगा। शास्त्र भी आपको कितना कर्म कर्म पर कहाँ कहाँ क्या क्या लिखी बात बात आएगी, लिखी भी होगी तो आपको वो उपलब्ध हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि कहाँ क्या लिखी है। वर्तमान समय के विषम काल में किसी को भी यदि गुरु माने तो उस पर विपरीतता का प्रश्न लगे बिना नहीं रह करता। तो ऐसी स्थिति में गुरु किसे माना जाए, क्या मतलब है? किसी को भी माने तो विपरीतता का प्रश्न लगे बिना नहीं रहता, क्या कहना चाहते, समझ नहीं आया। किसी को भी क्यों, सच्चा गुरु हो उसे गुरु माने तो विपरीतता का प्रश्न कैसे लगेगा? किसी माने वो व्यक्ति समझता है, किसी माने व्यक्ति, किसी माने शास्त्र का मर्यादा तो ये है कि गुरु को गुरु मानो, देव को देव मानो, जो गुरु नहीं है उसे गुरु नहीं मानो, अगुरु को अगुरु मानो, कुगुरु को कुगुरु मानो, ऐसा है ना। तो किसी तो जो गुरु को गुरु माने तो कैसे लगेगा, अगुरु को गुरु मानोगे तो लगेगा। तोरे मल जी ने तो बहुत कड़क जवाब दिया है ऐसी बात का, कि सब क्या करेंगे, कोई तो है ही देख रहे, किसी गुरु तो मानना ही पड़ेगा, तो जो भी हैं अच्छे बड़े उन्हीं में से माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सती है और उसका पति परदेश चला गया हो, मरा नहीं हो, कब मर गया हो कुछ भी, तो वो उसका मिलने की संभावना नहीं हो, तब क्या करे, किसी को पति बिना माने बिना तो चलता नहीं है, तो किसी को भी पति मान सकती वो सवाल है। जो पति नहीं है उसको पति मानने की परमिशन आप दे सकते हैं? जो हमारा पिता नहीं है उसे पिता मानने की परमिशन दे सकते हैं? कि पिता मर गया कि पिता का पता नहीं है, हम किसी को भी पिता मानने की परमिशन दी जा सकती है? जैसे पिता और पति के बारे में इतने सेंसिटिव हैं, ऐसे गुरु के बारे में होने चाहिए। तो फिर ऐसा प्रश्न उठाया कि वो निबुरा कहलाएंगे, क्यों कि वो बिना पति की कहलाएगी, ये क्यों कहलाएगी, पति की मृत्यु मिल नहीं रहा है, चला गया है कहीं, अब मरने का सूचना आ जाए तो वो वैधव्य के चिन्ह अपना लेगी, अब मरने की सूचना नहीं आएगी तो वो बराबर सौभाग्यवती जैसी ही रहेगी, और रहनी चाहिए ना, सौभाग्यवती जैसी रहने का तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रृंगार करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी विधवा जैसे वस्त्र भी नहीं पहनेगी, जो सौभाग्य के चिन्ह हैं उन्हें अपनाएगी कि नहीं? सौभाग्य के चिन्ह अपनाने का मतलब कोई विषय कसाय की तीव्रता से मतलब श्रृंगार का मतलब नहीं होता है। 80 वर्ष की क्या 100 वर्ष की बुढ़ी अम्मा भी होती है, और 101 वर्ष का उसका पति जिंदा हो तो वो जो कहते टीकी मीकी क्या लगाते, जो भी सौभाग्य के चिन्ह हैं जिसे श्रृंगार कहते हैं, जैसे रंगीन साड़ी पहना, वो करेगी कि नहीं करेगी? उसी का बेटा मर गया हो तो उसकी जो पुत्र वधू है, नाती मर गया हो तो उसकी जो पत्नी है वो वैधव्य है, वो नई उम्र की है, वो नीट एंड शौकीन कपड़े, वो मतलब क्या बोलते हैं, जो सौभाग्यवती के कपड़े नहीं पहन करके भी काफी अच्छे कपड़े पहन सकती है वो, और बुढ़ी अम्मा सौभाग्यवती के पहनना पड़ेंगे पड़ेगी, और भले ही उसकी अपेक्षा काफी सिंपल होंगे। तो सहज सिंपलता होना अलग बात है और श्रृंगार का चिन्ह होना अलग बात है, थे? इन दोनों को मतलब ऐसा नहीं है कि श्रृंगार का मतलब उसने श्रृंगार किया इसलिए वो बहुत विकृत स्वभाव वाली ही है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो तो उसकी पति की उपस्थिति की वजह से जितना आवश्यक वो श्रृंगार है वो करना चाहिए, करेगी, और बाकी बहुत उसकी वैराग्य प्रवृत्ति की हो सकती है ना, ऐसी बात है। अब ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आ नहीं रहे हैं, इसलिए खत्म करें आज इस खेल को। जो आपने कहा था कि मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए भी द्रिवलिंगी मुनिराज नवमे गृहदेव तक जाता है, लेकिन कहा कि पंचम गुणस्थान वर्ती सोलहवे सुरक्त तक जाता है, लेकिन वह सम्यक दर्शन सहित होता है, द्रिवलिंगी सम्यक दर्शन सहित नहीं होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। देखो वो जो पंचम बोला ना अनुवृत्ति, वो पंचम सच्चा हो तो पंचम गुणस्थान वाला होगा ना, वो सोलह सुरक्षा ऊपर नहीं जाता, ये बात तो नक्की हो गई ना। अब मुनि द्रिवलिंगी है, मिथ्या दृष्टि द्रिवलिंगी पहले गुणस्थान में है, लेकिन द्रिवलिंगी है और 28 मूल को निर्दोष पालता है, तो वो नौवे गृह में बैठ जाता है, शास्त्र में लिखा है, मैं क्या करूं उसमें? गुणस्थान के हिसाब से थोड़ी लिखा शास्त्र में, गुणस्थान के हिसाब से तो पहले गुणस्थान वाला भी नौवे गृह में तक जा सकता है, गुणस्थान के हिसाब। लेकिन निगम निगम देश उसका आना वैसे यहां तक लिखा है कि परमहंस नामा परमति आगे सहस्रार्धनी गति, कि अजैनी भी बारहवें स्वर्ग तक जा सकता है। बोलो, वो तो गीत मिथ्या दृष्टि है। परमहंस नाम का परमति बारहवें स्वर्ग तक जाता है, और अगला समय समय दृष्टि पंचम काल का समय दृष्टि वृत्ति भी हो अभी पंचम काल में तो आठवें, अब जो कुछ भी सही जो भी, लेकिन तो बारहवें तक तो नहीं जाता है। बच्ची से समझ लगा कि अजेनी भी बारहवें तक जाता है, लेकिन वो चौथे काल का अजेनी जाएगा। इसलिए इस स्वर्ग में ऊपर जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। हमने उसे धर्म का संबंध जोड़ दिया ना, इसलिए बात यह है नब्बे गृह के ऊपर समय दृष्टि ही जाते हैं तो वहां संबंध धर्म का संबंध है। जिस प्रकार सुदया बिन अनंतान बंदी विद्यमान होते होने से परदया असंभव अर्थात सम्यक नहीं है, उसी प्रकार भावलिंग बिन द्रिवलिंग सम्यक न होने से पूज्य नहीं है। यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि भावलिंग के बिना द्रिवलिंग हो तो द्रिवलिंग को कहां पूजता है। वो विकरापन ने कहा था यह बात कि वो तो द्रिवलिंग और भावलिंग दोनों है ना, तो वो जो नमस्कार कर रहा है तो सामने तो द्रिवलिंग दिखेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा तो भावलिंग को ही पूजने में है। वो तो डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाहर में कोई ऐसा दोष ही नहीं है जो तुम्हारी पकड़ में आ रहा है। वो डम्बे गृह जाने वाले का केवल ज्ञान गम है तो, और यदि आपके कहेंगे तो इसके बाद फिर पूजा पूजा तो का व्यवहार ही नहीं चलेगा। यदि आपके मन में शंका हो गई और आपके दिमाग में निकटी हो गया कि ये तो अंदर में भावलिंग इसका नहीं है, तो उसको आप ये नहीं कहते कि आप पूजिए उसे, अब पूजिए निर्दोष है। वो तो ये समझना कि आपको शंका नहीं है, फिर तो जबरदस्ती फिर कहीं हुआ तो जबरदस्ती हमें पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जा सकती, आप समझ रहे ना। अब वैसे मक्खी चली जाएगी, पेड़ों से चली जाएगी, अब जो वोमिटिंग होनी होगी तो हो जाएगी, और नहीं होगी पच में होगी तो पच भी जाएगी, जो होगी हो जाएगा। आंख में देखी नहीं खाई जा सकती है, तेरी समझ में आ गई फिर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो बात बताई है कि तू बहुत ही पीछे पड़ा है, उसकी बात में चिंता मत कर, यदि तेरे को बाहर से सब निर्दोष है तो उसी का नाम दुर्लभलिंग है जो बाहर से निर्दोष हो, लेकिन वो पूज वो तो जड़ की क्रिया, वो स्वभाव है, वो तो देह की क्रिया है, तो देह की क्रिया और जड़ की क्रिया स्वभाव कैसे पूज हो सकता है। जैसे अपन ने कहा था ना, देह चप्पल को अलग नहीं किया, कुर्ता धोती को अलग नहीं किया जा सकता है, गुरु जी को नमस्कार करना है तो भी आपका नमस्कार, आप चिंता मत कर, धोती कुर्ता के सामने भी आप झुक रहे हो तो भी आपका नमस्कार धोती कुर्ता को नहीं पहुंचेगा। ऐसा कर समझे ना, तो जाने दो धोती कुर्ता की बात, तो यदि वो स्टेच्यू है गुरु जी का तो उन्होंने धोती कुर्ता भी वैसे ही है और उसके अंदर की देह भी वैसे ही है और आत्मा है ही नहीं, और आप देख रहे हैं नहीं, और फिर भी आप उसे नमस्कार करते हैं ना, तो अभी आपका नमस्कार तो भगवान महावीर को ही पहुंचता है, उनकी यहां की देह की विष्णुमार की मूर्ति को थोड़ी पहुंचता है। और आप समझेंगे आपका यही रह जाए तो आप नमस्कार करें, बोलो वो स्थापना से वहां पहुंचता है ना, तो ऐसे भावलिंग कोई है। माने ये सैद्धांतिक भाषा में नहीं कहा जा सकता कि द्रिवलिंग पूज्य है, मतलब अकेला द्रिवलिंग। तो मैंने कल ही कहा था परसों कि भाव जहां भी निंदा की गई है, पूजत्व का निषेध किया गया है, वो तो भावलिंग बिना द्रिवलिंग की बात है और वो सैद्धांतिक है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल तो पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि तो द्रिवलिंग तो कहते ही उसे जो बिल्कुल निर्दोष हो, वो सैद्धांतिक पूज्य नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या करोगे, जब पहले गुणस्थान वाला द्रिवलिंग सच्चा है तो आप निर्णय कैसे करोगे पहले गुणस्थान में है, ये तो सैद्धांतिक है ना, कोई हो तो बस यही कल्पना करो तो कह दो पूज्य नहीं है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, सैद्धांतिक। अब प्रैक्टिकल क्या करेंगे? लुमिंग रिविक जाने वाला जो मुनिराज है वो पहले गुरुस्तान वाला ड्रिबलिंग ही है, लेकिन केवली के अलावा कोई पता ही नहीं लगा सकता। बाहुबली खड़े थे ऐसे खड़ा हो, फिर आप ध्यान में लगाओ ना, बोल रहा हो ना कुछ ना हो ना हार को ना आठ कोई निर्देश ही नहीं, वो बोले क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे? उसी कोई प्रवृत्ति होगी तो पता लगाएंगे ना, कुछ बोलेगा कुछ चलेगा कुछ क्रिया करेगा तभी तो आप दोष देखेंगे ना। ऐसे में दोष कैसे देखेंगे? तो सैद्धांतिक दृष्टि से कोई ये नहीं कह सकता कि वो पहले गुलिस्तान में पूज्य है, समझ गए ना, लेकिन क्रियान्वयन में क्या होगा? चरणानी कहेगा कि हाँ कुछ नहीं बता दी, उसमें निर्दोष आते हैं तो कुछ पूछ जाएगा, ये अंतर है। इसलिए आपको दो तरह के कथन मिलेंगे, तो फिर वो मुझुन में पड़ते हैं, ये क्या करें, ये माने के ये माने, ये माने के ये माने, ये माने के ये माने। देखो कोई भी काम होता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो क्रियान्वयन हो ही नहीं सकता है। आपने कुछ भी ऑर्डर निकाल दिया, कुछ भी एक कर दिया, समझे ना, जैसे आपने कह दिया कि 6 से 6:30 तक भक्ति और 6:30 से 5:30, अब मान लें ऊपर भक्ति से यहाँ आने में जो 2 मिनट लगते हैं, अब 2 मिनट आप बचा के करना चाहें तो कैसे होगा, समझे ना, तो वो तो या तो प्रवचन 5 मिनट लेट होगा या भक्ति 5 मिनट पहले खत्म करनी पड़ेगी। जब ऊपर से आने में 3 मिनट लगते हैं तो आपको 10 मिनट की गुंजाइश रखेंगे तो वही 2 नियम सही पाले जा सकते हैं। अब रोजीना गड़बड़ होनी होनी है, वो तो क्यों होनी है, क्योंकि वो जो 6:30 तक है मेरी भक्ति का टाइम, तो 6:30 तो कोई टोक नहीं सकता, 5 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ, अधूरा भजन थोड़ी बीच में छोड़ा जाता है, क्यों उधर गया थोड़ा इधर गया ऐसे करते करते आए गई वो लेट नीचे हो गई, समझ गए ना आपकी मैंने मेरे कहने का मतलब, वो हो ही नहीं सकता, वो प्रैक्टिकल वो होगा ही नहीं। तो आप अनप्रैक्टिकल नियम बना देंगे तो वो तो ऐसे ही पालन होंगे जैसे कि हिंदुस्तानी टाइम चलता है, ऐसे चलेगा ना फिर तो वो क्या है मालूम, ये जितनी रेल गाड़ियों के जो टाइम टेबल बनते हैं ना, तो जैसे यहाँ से अजमेर तक का बनाया तो अजमेर तक का जो उनको 2 घंटा समय लगता है तो वो टाइम टेबल बनाने 2.25 घंटा रखते हैं, तो 15 मिनट तो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो वो आपने देखा होगा कभी कभी गाड़ी कहते कवर कर लिया, तो अपने समय तो ड्राइवर ने तेज दौड़ाई होगी इसलिए कवर कर लिया, ये बात नहीं है, तेज न दौड़ाने की परमिशन ही नहीं है, तेज दौड़ाने का तो वो इंजन बंधा ही रहता है जितनी हाई लेवल जो है उससे ज्यादा, तो वो समय कवर क्या हो जाता है, वो बीच बीच में टाइम टेबल में समय छोड़ा होता है ना, वो उसका नियम है 100 मील पे 15 मिनट का गैप दे देना, 100 मील पे 15 मिनट का गैप दे देना, यदि वो नहीं होगी तो गाड़ी की ज्यादा खड़ी रहेगी उस स्टेशन पे जाकर के, तो वो गैप जो छोड़ा हुआ होता है वो अपनी रफ्तार से चलती है, और यहां से जाकर के कहते हैं ना कि 1000 मील तक गई तो 2 घंटे का कवर कर लिया, तो 2 घंटे का गैप छोड़ा था इसलिए वो कवर हो जाता है, यदि आप छोड़ेंगे नहीं तो कवर नहीं होगा। अपने अभी ऐसे होता है सदन में, अपन क्या करते हैं कि एक जगह कहीं 15 मिनट का गैप छोड़ देते हैं, ऐसा लिखेंगे कि 6 से 6:30 भक्ति, 6:30 से पहला प्रवचन, फलाना प्रवचन, इतना उतना, और फिर क्लास, तो प्रवचन के 15 मिनट बाद क्लास 15 मिनट बाद छोड़ देंगे, 9:30 बजे प्रवचन खत्म, 9:45 से क्लास, तो वो उतना उतना धक्का खाते खाते 15 मिनट वहां तक पहुंचेंगे, तो वो वास्तव में 9:45 पे छूटने वाली है, आप समझ गए ना, वो गैप भी इतना छोड़ा गया होगा कि इतने से काम चल जाए तो ही वो फिर समय पर समाप्त होगा, नहीं तो समय पर समाप्त नहीं होगा, ऐसा नियम है। मुनिराज इरिया समिति का पालन कैसे करते हैं, क्योंकि उनके चलने की गति तो अत्यधिक तीव्र ही दृष्टिगोचर हुई है, तीव्र गति से चलने से इरिया समिति नहीं पल सकती, ये कहां जाएंगे, मंद गति से भी चले ऊपर को मुंह करके चले तो नहीं पलेगी, इतनी आंख में ऐसे तो देख सकता है ना कितनी तेज चले, दौड़ने की बात तो नहीं, तेज चलने की बात तो है ना, उससे ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, जितनी अच्छी तरह से दिखता जाए उतनी अच्छी तेज चलना चाहिए, लेकिन जो दिखाई देती है वो कोई ऐसी बात नहीं है। सोचने की बात तो ये है कि चलते चलते गप लगाते हैं, ऊपर को देखते हैं, नीचे को देखते हैं, जमीन को देखते ही नहीं है, है? तेज चले, मध्य चले, लेकिन जमीन को देख के चले ना, तो जीव जंतुओं का भी बचाव होता है। वे भी तो नंगे पैर हैं, तो कांटे माटे से लगने से भी बच सकते हैं। तो देख सुविधा भी है, यदि वो चप्पल पहनने की सुविधा होती तो उसे कोई देखने का सवाल ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत देखते हैं वो और जो जैसे तो देखते हैं, तो वो भी नहीं देखे तो और मुश्किल हो जाए। तो चाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपयोग दूसरी जगह नहीं भटकने। बात क्यों नहीं करना कि उपयोग दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। उपयोग दूसरी जगह जाएगा तो निश्चित रूप से जैसा देखना चाहिए समझ पूर्वक वैसा दिखाई नहीं देगा। इस संबंध में मैं एक बात कहता हूं कि कुछ लोग दिगंबरों की बात नहीं है, ऐसा कहते हैं कि ईरिया समिति जो पहले सवारी का त्याग जो था वो तो हम पशुओं पर बैठते थे ना, हाथी पे, घोड़े पे, बैलगाड़ी में बैल जोते जाते थे, तो उन्हें तकलीफ होती थी इसलिए नहीं बैठे। अब क्या जरूरत है, अब तो पेट्रोल से चलती गाड़ी, किसी को तकलीफ होती नहीं, ऐसा कहते हैं बहुत से। पर अमेरिका में जो है ना साधु गए ना सितंबर, इसलिए हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कार में बैठो अपने आराम से, बस कोई सवारी करता है। सवारी सवारी कहाँ जी, सवारी तो वो चेतन पे बैठे, एक चेतन दूसरे चेतन पे। जैसे लोग कहते हैं कलकत्ते में आदमी रिक्शे चलाते हैं कौन, तो कहते हैं बहुत अमानवीयता है, मैंने गधा चलाए तो बैठ सकते हो आप, आदमी पे नहीं बैठे। ऐसी अपन मानवता चलती है ना, ऐसी दया चलती ना, ऐसी वो बोले। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं चलते हैं कि जिस जीव पे सवारी आपने बैठी उसे तकलीफ होती है। हाथी को क्या तकलीफ होगी आपके वजन से, क्योंकि उसके तकलीफ तो जो तुम्हारे पैर के नीचे आके कीड़े मरते हैं वो हाथी ईरिया समिति पूर्वक नहीं चलेगा। तुमने ईरिया समिति पूर्वक चलना है ना, तुम पालकी में बैठे हो तो पालकी वाले भी कहार भी ईरिया समिति पूर्वक नहीं चलेंगे। तो ईरिया समिति का कंसेप्ट ही खत्म दिमाग में से है उन्हें। और फिर वे क्या कहते हैं, हम अपने लिए ले जाए तो हमें उसका पाप लगे, तो गाड़ी तो जा ही नहीं, ट्रेन हम तो उसमें बैठ गए, उसे मजे करते हैं जी, तो हमारे माथे थोड़ी है, एक तरह ही चलता है। हम अपनी खुद की कार चलाए तो गड़बड़ है, सरकारी बस में बैठ गए तो हमें काहे का पाप। ये दोनों तर्क मैंने सुने हैं साधुओं के मुख से, समझे ना। तो मैंने उन्हें कहा भी है कि ऐसी बात सही नहीं है, वो बस तो आपके लिए चलती है, आपका अनुमोदना का तत्काल अनुमोदना का उसमें लाभ है कि नहीं है। वो ड्राइवर जो ही ईरिया समिति पूर्वक चलता है और उतनी तेज रफ्तार से चले 100 मील एक घंटे में, तो फिर वो कितनी दूर की चीज देखे, मुश्किल से कुत्ते बिल्ली ही देखे जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली भी इसलिए नहीं कि वे मर जाए, नहीं ना मर जाए, इसलिए नहीं कि उनके से टकरा करके हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बताते हैं, इसलिए देखते हैं लोग उनके मरने की कौन परवाह करता है। सांप जा रहा है, सांप को कौन बचाने को कहता है, उसे निकल जाएगी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने का डर नहीं है। गाय को बचा रहे तो उसे नहीं बचा रहे कि वो मर ना जाए, इसलिए बचा रहे कि गाय से टकराएगी तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई करुणा नाम की वो चीज ही नहीं, इसलिए क्या सवाल है। हम समय तो हो गया, फिर भी हम पत्थर की प्रतिमा को नमस्कार करते हैं तो वह एक इंद्रिय है। हम पंचेंद्रिय वाले अपने को कम ज्ञान वाले एक इंद्री को नमस्कार क्यों करें। एक इंद्री है पत्थर की प्रतिमा, हम पत्थर की प्रतिमा को करते ही नहीं है भाई साहब। हम तो मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को नमस्कार करते हैं, स्थापना निक्षेप में, और चेतन में तो चेतन की स्थापना होती नहीं है, तो एक इंद्री में भी पंचेंद्री की स्थापना नहीं हो सकती। कल ही कहा था ना कि चेतन में अचेतन की स्थापना नहीं होती है। मुनियों की आहार आदि क्रिया के संबंध में भी कुछ जानकारी देने की कृपा करें। ये तो अपने जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नामक किताब है ना, तो उसमें जो आहार दान दीक्षा कल्याणक के अधीन के आहार दान के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, वहां पढ़ लेना। अभी यहां बोलेंगे तो 1 घंटा पूरा लगेगा, उन्हें तो किसी पंच कल्याणक में आ जाना तो आहार दान पर जो मेरा व्याख्यान होता है वो सुन लेना, पर वहां नहीं जा सको तो यहाँ कैसेट होगा आहार दान वाला पंच कल्याणक का, वो कैसे ले लेना और वो सुन लेना, क्योंकि अभी एक मिनट में तो क्या बताया जा सकता है। कुछ शास्त्र में मैंने देखा नहीं अभी तक वो क्यों
है। हाँ
हाँ तो वो तो मतलब जनरल ऐसी है ना, हर जगह तो डामर रोड हो नहीं। वैसे मैं अपने विवेक से कहता हूँ कि डामर रोड तो सबसे ज्यादा शुद्ध है, वहाँ कीटाणुओं की संभावना बहुत कम है और बहुत साफ दिखाई देते हैं, मतलब कोई ऐसी दोष नहीं है। अब शास्त्र में ऐसा खोल बोल दिखा ना कि बहुत जो जीव निकल गए उसका मतलब वो जमीन परासक हो जाती है, और जो जमीन जहाँ लोग नहीं निकलते ना तो वहाँ फिर कीड़े मकोड़े रस्ते में बहुत रहते हैं, इसलिए वो बात है। जब मैं घर जाता हूँ तब यदि गांव में कोई मुनिराज आते हैं तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि उनके पैर पड़ो, क्योंकि समाज के लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मुनि को नहीं मानता। इस तरह की अनेक बातें अनेकों कहते हैं, तो मम्मी पापा की बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। आप अपने विवेक से निर्णय करें, और मम्मी पापा को जितनी परेशानी होती है वो जो इस वजह से जितनी होती है ना, वो यदि देव सास गुरु का निर्णय सही नहीं होगा तो उससे अनंत गुणी परेशानी अनंत काल तक होने वाली है। हमें तुम्हें सभी को होती है, सच्चा निर्णय करके सम्यक व्यवहार करने में हम सब कोई परेशानी होने वाली है सामाजिक लेवल पर। अब उस परेशानी की वजह से तो हम परेशानी से बच जाएंगे ये मत समझना, अनंत काल तक अनंत गुणी परेशानी भोगनी पड़ेगी। अब दो परेशानियों में से अब किसका चुनाव करते हैं अपने विवेक पर निर्भर है। माता पिता को भी समझाओ कि पापा आप मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे बताओ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। लेकिन आपका ये तर्क मेरी समझ में नहीं आता कि लोग आपको उलाहना ना दें इसलिए करना, आप तो बताओ सही क्या है, ठीक क्या है। मेरे पिताजी भी मेरे से कहते थे, बहुत सही घटना है, मेरे से ये कहते थे वो मेरे पिताजी के, मेरे जो गुरुजी थे मक्खनलाल जी वो दूसरे ग्रुप में थे, मैं इस ग्रुप में था। तो वो ये कहते थे कि तुम्हारे गुरु इतने बड़े विद्वान सारी समाज में प्रसिद्ध, वो कुछ नहीं समझते, तुम सबको समझते हो। ये तक मेरे से बार बार कहते हैं, वो जो कहते हैं उनने तुम्हें पढ़ाया है, तुमसे बड़े विद्वान है ये है ये है, और वो गलत कहते हैं, तुम सही कहते हो, ये कैसे मानते। तो मैंने कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, आप तो ये बात देखो उनने क्या कही और मैंने क्या कही, और उस बात को आप अपने विवेक से निर्णय करो, शास्त्र से निर्णय करो, उनके वजन से निर्णय करते हो। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उनका वजन मेरे से कम है, मेरे गुरु लोग मेरे ज्यादा ही वजन है, लेकिन मैंने जो बात कही मान लो कि पुण्य से कैसे स्वभाव से पुण्य बंद होगा मोक्ष नहीं होगा, और उनने कहा कि नहीं वो पुण्य स्वभाव मुक्ति का कारण है। तो इन दोनों में से आप अपने विवेक से और शास्त्र से निर्णय करो, और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपने पिताजी को और क्या कहूँ। आप मेरे को ये मत कहो कि मैं बहुत बड़े हैं और सारी दुनिया उन्हें बड़ा मानती है, इसलिए फिर मैं कहूँगा कि उनसे बड़े कांजी स्वामी है, फिर मैं कहूँगा कि उनसे बड़े कुंद कुंद है। तो वो बड़ेपन और छोटेपन का निर्णय क्या करेंगे। तो आपकी परेशानी के कारण मेरे से मत कहो, आप मेरे को ये बताओ कि सही क्या है। ये तो लौकिक बात है, मैं पूछता हूँ कि अपन जैनी है इसलिए अपन कम परेशानी का कारण है, फिर नौकरी नहीं मिलती, अपन को वोट नहीं मिलते, अपन चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, अपन जीत नहीं सकते, क्योंकि हिंदू हिंदू को देता मुसलमान मुसलमान को देता, जैनियों को वोट ही नहीं देता, बहुत परेशानी है। अपन हिंदू बन जाए मुसलमान बन जाए क्या नुकसान है। फिर मतलब परेशानी तो अपन को जैनी होने के कारण भी बहुत है, परेशानी तो अपन को हिंदुस्तानी होने के कारण भी बहुत है, परेशानी तो अपन को आलू जमीन के अंदर नहीं खाते उसके कारण भी बहुत है, परेशानी रात्रि भोजन नहीं करते उसके कारण भी बहुत है कि नहीं। मैंने अपने जो सदाचारी जीवन अपना जी रहे हैं उसके कारण कल